అంశండి. శాంత చిత్త, దివ్య బుద్ధి కా వరదాన్ ప్రాప్త కియే హుయే, బహుత్ గహరాయీ సే విచార సాగర మంథన్ కర్కే బాబా కే జ్ఞాన్ కే ఖజానే ఖుద్ ప్రాప్త కర్తే హై ఔర్ ఔరోన్ తక్ పహుంచాతే హై. ఐసే సన్మాననీయ ఆదరణీయ రాజు భాయ్ జీ కా హమ్ స్వాగత కర్తే హై, స్వాగత కర్తే హై. నయ వర్ష కే పురుషార్థ కే లియే బహుత్ సుందర బాతే ఔర్ సహజతా సే సరళతా సే హమ్ భాయ్ సే సునేంగే. దునియా మే నయ వర్ష కే లియే క్యా క్యా ప్లాన్ కర్తే హై, పరంతు దృఢతా యా శక్తి న హోనే కే కారణ ప్లాన్ ప్లాన్ రహ జాతా హై, ప్రాక్టికల్ మే నహి లా పాతే. హమ్ సభీ కా పరమ సౌభాగ్య హై కి హమ్ పురానే సాల్ కో విదాయీ ఔర్ నయ సాల్ కీ శురువాత్ పరమాత్మా కే ఘర్ సే కరెంగే. తో నయ సాల్ మే పురుషార్థ మే క్యా నవీనతా లాయే, యే బహుత్ సుందర విషయ లేకర్ రాజు భాయ్ జీ హమ్ సభీ కే సమక్ష పహుంచే హై. భాయ్ జీ కా పరిచయ ఇస్ తరహ సే హై, కాన్పూర్ మే ఆధ్యాత్మిక పరివార్ మే ఆప్కా జన్మ హువా. 1960 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके घर से ही शुरू हुई थी. 1972 से आप बाबा के महायज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं. आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन हैं. वर्तमान समय आप मुख्यालय पांडव भवन ज्ञान सरोवर शांतिवन के फोटोकॉपी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं. पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे हम रोज सुनते हैं तथा देश विदेश के समाचार सुनते हैं, ये सब बातें भाई जी के द्वारा ही हम सभी तक पहुंचती है. दादियों के साथ भाई जी का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा. समीपता का अनुभव करने का भाग्य आपको संगम पर प्राप्त हुआ. आपको बाबा द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे आपने अव्यक्त मुरलियों को संग्रहित करके अनेक किताबें प्रकाशित की हैं. देश विदेश में भ्रमण करके महासम्मेलन, मेले, सेमिनार इत्यादि ईश्वरीय सेवा का सुकुशल संचालन किया और कर रहे हैं. शाश्वत योगी खेती और ग्राम दत्तक योजना ऐसी सेवा के लिए आप ही प्रेरणा स्रोत है. तो हम सभी मिलकर भाई जी से निवेदन करते हैं, आप हमें नए वर्ष के लिए कुछ नवीनता से पुरुषार्थ करने की विधि बताएंगे और इसी तरह से हम फॉलो करने का प्रयत्न भी करेंगे. ओम शांति.
ओम शांति. ओम शांति. बाबा के बेहद घर में आप सभी नया वर्ष मनाने के लिए पहुंचे हैं. पुराने वर्ष 2024 को विदाई देंगे और नया वर्ष 2025 प्रारंभ करेंगे. बाप दादा हम सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए अनेकानेक वरदानों से कल सजा देंगे. बहुत कुछ नए वर्ष की प्रेरणाएं हम सबको मिलेंगी. लेकिन बहुत समय से हम सभी प्रतिवर्ष नया वर्ष मनाते रहे हैं. बाबा जब भी नए वर्ष की मुबारक बधाइयां देते हैं तो कहते हैं, बच्चे नए वर्ष के साथ साथ नए युग की बधाई, क्योंकि अभी हम सबका नया युग, स्वर्णिम युग, गोल्डन दुनिया सामने दिखाई दे रही है. ये कलयुगी दुनिया जाएगी और हमारी सतयुगी दुनिया आएगी. इसलिए बाबा हमेशा उस युग की बधाइयाँ मुबारकें देते हैं और हर एक बाबा के बच्चे में ये उमंग रहता है कि अब तो बहुत थोड़ा समय है, एक संधि में शब्द आता है सड पंथ पर हैं हम। सड कहते हैं आवाज़ को, आवाज़ देंगे और इधर से उधर पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक पैर उठाने की ज़रूरत है। ऐसे हम बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे समय पर हमें क्या पुरुषार्थ करना है, क्या सेवाएं करनी हैं, क्योंकि हम सबके सामने मीठे बाबा ने दो ही लक्ष्य दिए हैं। एक लक्ष्य है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना, ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनना, और दूसरा लक्ष्य है अपने बाबा का नाम रोशन करना, प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करना। इसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं याद और सेवा, स्थिति और सेवा। तो स्थिति बनाने के लिए हम सबको समय प्रसमय बहुत से गोल्डन चांस मिलते हैं। योग की तपस्या करते हैं, भट्टियाँ करते हैं, एकांतवास करते हैं, और विशेष जब जनवरी मास नए वर्ष का नया मास शुरू होता है तो ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को याद करते हुए उनके कदम पर कदम रखकर आगे चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में क्या क्या किया, अव्यक्त होने के बाद बाप दादा ने उस सब का वर्णन किया है। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, और वो बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके शिव बाबा के साथी बन गए, अव्यक्त वतनवासी बन गए। और पिछले इतने वर्षों से हम सभी बच्चों को उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अव्यक्त महावाक्यों द्वारा हम सबकी पालना की, अभी अव्यक्त वतन से हम सबको सकास दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, प्रेरणाएं दे रहे हैं कि मेरे बच्चे अब जल्दी से जल्दी अपनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बनाकर मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे किया, हम सबको बाबा ने जो बताया है कि अंतिम समय में बाबा ने केवल तीन बातों का पुरुषार्थ किया। एक, अपनी निराकारी स्थिति बनाई। हमेशा यही स्मृति रही कि मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। निराकारी स्थिति के कारण संपूर्ण निर्विकारी बने, और संपूर्ण निर्विकारी बनने के बाद भी कहीं सूक्ष्म में भी कोई अहंकार न रहे, निरहंकारी बन गए। तो ब्रह्मा बाबा ने विशेष अंतिम दिनों में ये गहरा पुरुषार्थ किया, हर बात से अपने आप को उपराम किया, बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण किया, आवाज की दुनिया से दूर चले गए। मुरलियों में जो गीत बजते थे बाबा ने गीत बंद करवा दिए, बच्चे जो सवेरे सवेरे कमरे में आके गुड मॉर्निंग रूह रिहान करते थे बाबा ने वो भी आवाज़ बंद करा दी। ऐसा गहरा पुरुषार्थ किया जो बहुत जल्दी थोड़े समय में ही 18 जनवरी 69 को अव्यक्त वतनवासी बन गए। हम सभी बाबा के बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते हुए ब्रह्मा बाबा के इन कदमों पर कदम रख कर के अपने आप को चेक करें कि कितना समय हम उस निराकारी स्थिति में रहते हैं, कितना इंद्रियां शीतल शांत शुद्ध निर्विकारी बनी हैं और कितना आत्मा निरहंकारी स्टेज को प्राप्त हुई है। साथ साथ ब्रह्मा बाबा का समर्पण, उनका ट्रस्टीपन का जीवन, उनकी एक बैलेंस युक्त जीवन, अगर थोड़ा सा इस पर हम नजर डालें तो जिस दिन से ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व कन्याओं माताओं के आगे समर्पण किया, उस दिन से कभी ये नहीं पूछा ये सब कहाँ खर्च हुआ। समर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, स्वयं को भी समर्पित कर दिया और समर्पण होने के पश्चात वे संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहे, यज्ञ के संपूर्ण ईमानदार वफादार बनकर रहे। ये प्रभु अमानत है, यज्ञ का एक एक कणा एक एक दाना अमूल्य है, बहुमूल्य है, कहीं भी व्यस्त न जाना चाहिए। बहुत ध्यान दे करके यज्ञ को संभाला, यज्ञ रक्षक बने और साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में अथॉरिटी और नम्रता का बहुत सुंदर बैलेंस रखा। बाबा के सत्य ज्ञान को उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया कि हाँ ऐसा कैसे होगा, जो कुछ बाबा ने कहा ये सत्य है और उसी को ही हमें धारण करना है, उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़ा, सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा उसमें अचल अडोल एक रस रहे। हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थितियों को चेक करें, क्या हम इतना सत्य ज्ञान की धारणाओं की ब्राह्मण जीवन की अथॉरिटी बने हैं। कुछ भी हो जाए, जो हमारे ईश्वरीय नियम हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया और साथ साथ अथॉरिटी होते हुए भी बाबा कई बार कहते हैं लोग झूठा ज्ञान दे करके भी कितना अथॉरिटी से बोलते हैं और हमें तो सत्य ज्ञान ज्ञानदाता से मिला, उसके बाद भी अथॉरिटी होते हुए भी बाबा बहुत नम्रचित होकर के नम्रता के साथ हर बच्चे को सम्मान देते हुए अपनी बात सामने रखी, उसका अहंकार नहीं दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन का एक बैलेंस आप देखें, इतना बच्चों को प्यार दिया जो सब ने कहा मेरा बाबा, हर एक के दिल से निकला मेरा, लेकिन उस मेरे में कहीं भी अटैचमेंट न हो उसका बहुत ध्यान दिया, न्यारेपन का बैलेंस रखा, जितना प्यार दिया प्यारे बने उतना न्यारे बन करके भी रहे और उस बैलेंस के कारण किसी देहधारी में कहीं पर भी न व्यक्ति में न वस्तुओं में न साधन सुविधाओं में कहीं भी अटके नहीं। आंतरिक बेहद का वैराग्य और उपराम वृत्ति से उन्होंने इस मंजिल को पार करते हुए अपनी संपूर्णता प्राप्त कर ली। हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मावत्स ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं और हम सब के सामने यही लक्ष्य है कि हमें बाबा के समान साकार ब्रह्मा बाबा के समान अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। उसके लिए नए वर्ष में कुछ नई प्लानिंग की जाए, कुछ नए नए विचार आपके अंदर जरूर आते होंगे। दो बातें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। एक ओर हम सब देख रहे हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और किस घड़ी इसका अचानक विनाश होगा, कौन सी पेपर्स कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी। वर्णन तो हो रही है, लोग कह रहे हैं, साइंस कह रही है, आजकल भविष्य वक्ता भी कहने लगे हैं। वो विनाश के दृश्य, विनाश के नज़ारे जो कभी बाबा वर्णन करते थे मुरलियों में, अभी बाबा कहते अभी तो आप स्थापना के दृश्य देखो, विनाश की बातें मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन इस महाविनाश के साथ साथ इस पुराने हिसाब किताब का जो हम सब ने पिछले अनेक जन्मों का खाता खोला है, देहाभिमान के कारण द्वापर युग से जो इन कर्म इंद्रियों से पाप कर्म हुए, विकर्म हुए हैं, वो अंतिम समय होने के कारण अपना बदला लेने, अपना चुकतू करने हिसाब सामने आएंगे। चाहे वो कोई भी हो, ज्ञानी हो, अनुभवी हो, योगी हो, जो भी रहा हुआ है पिछला, वो कहीं न कहीं से सबके सामने बाहर आएगा। अब उसको पार करने के लिए उसमें भी दो बातें सामने आती हैं। एक तरफ है माया के पांच विकार, जिसको बाबा कहता है पांच रावण के शीश। बड़े बड़े शीशों को तो हम सबने लगभग उतार दिया, लेकिन जो उनके छोटे छोटे रूप हैं, बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा वैर विरोध पर चिंतन पर दर्शन आलस्य अलबेलापन अनुमान आवेश आवेग, बहुत सारी उसकी सूक्ष्म रचना है। हर पुरुषार्थी के सामने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माया अपना गुप्त वार करती है। योगी आत्माएं अगर अलर्ट नहीं हैं तो धोखा खा सकती हैं। और की कमाई बाबा कहते सेकेंड में खत्म हो सकती है। जो इतने समय से पुरुषार्थ किया, मम्मा का एक शब्द मुझे बार बार कानों में गूंजता है। मम्मा कहती थी कि बाबा के बच्चे बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं, लगातार 6 मास तक इतना अच्छा चार्ट रखते हैं, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करते, एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं करते, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते, बाबा की याद में भोजन खाते, संग की परहेज करते, दिव्य गुणों पर ध्यान देते, जो पुरुषार्थ की मूल बातें हैं उन पर फुल अटेंशन देते हैं। 5-6 मास अच्छे पुरुषार्थ के बाद एक छोटी सी कोई घटना घट जाती, कोई ने प्यार से बात नहीं किया, कोई ने मेरी बात स्वीकार नहीं की, कोई ने मुझे प्यार की नज़र से सम्मान से देखा नहीं, एक सेकेंड में जो उत्तेजना आती है, क्रोध आ जाता है, जोश आ जाता है, वो 6 मास 9 मास का किया हुआ पुरुषार्थ 5 मिनट के गुस्से से, क्रोध से सब पानी फिर जाता। इतनी की हुई मेहनत, थोड़ा सा अलबेलापन हुआ, थोड़ा सा जोश आ गया, पूरी कमाई खत्म कर देते हैं। कौन सी समझदारी है? हम सब इस बात पर पूरा अटेंशन दें, कभी भी कोई भी हिसाब किताब अपनों द्वारा, अपने स्नेहियों के द्वारा, अपने समीप साथियों के द्वारा, वो पेपर बन करके बातें आ सकती हैं। क्या हमने अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ, इतनी उज्ज्वल, इतनी एक रस बनाई है कि कोई भी बातें आएंगी, कैसी भी बातें आए, ऐसे नहीं कहना आएंगी, हम कहते हैं आएंगी ही, सबके सामने आएंगी। क्या उन सभी बातों में मैं अपनी स्थिति को अचल, अडोल, एक रस रख सकता हूं? प्रश्न ये है। आने वाले समय में माया किसी न किसी रूप में पछाड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि बाबा एक शब्द कहते हैं, जब दुश्मन हार खाने पर होता है, जब समझता है बस मेरा तो बस पार्ट पूरा हो रहा है, मैं तो हारा कि हारा, तो अपना अंतिम वार अजमाता है और बहुत फोर्सली मारता है, जिससे कमी कुछ तो कम से कम नंबर मिल जाए आगे। इसलिए इस अंतिम समय में हरेक को अपनी दो शक्तियों पर बहुत ध्यान देना है। दो दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक है हमारे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और दूसरी है संगम युग के अमूल्य समय की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारी इसमें नष्ट न हों। नष्ट कैसे होती हैं? जब कोई भी दृश्य सामने आता है, जब कोई भी परिस्थिति पेपर बन करके हमारे सामने आती है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, कहाँ से हो गया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इन प्रश्नों की क्यों अगर लग गई तो कभी भी स्थिति प्रसन्नचित नहीं रह सकती और वो पेपर में संकल्प शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस संकल्प शक्ति से हम बहुत श्रेष्ठ सेवा करने के कारण बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं, उस संकल्प शक्ति पहले नष्ट होगी, व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाएगी। तो ये एक बात चेक करना कि किसी भी प्रकार का अगर कोई हिसाब किताब शरीर का आ जाए, संबंधों का आ जाए, धन का आ जाए, मन का आ जाए, संबंधों से आ जाए, क्या उसी सब के हिसाब किताब को मैं बाबा के साथ और हाथ की शक्ति से बिना कोई क्वेश्चन किए हुए पार हो सकता हूँ? हो सकता हूँ, कौन कौन समझते हैं हो जाएंगे? सोच के बोलना, ऐसे नहीं है, पेपर बड़ा है। तो एक माया का रूप, विकारों का स्वरूप, बहुत गुप्त रूप में अंतिम वार हरेक के सामने अजमाने का प्रयास करेगा और हम सबको अपनी स्थिति इतनी एक रस बनानी है, हर बात पर फुल अटेंशन दे करके, नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर रह करके इन विकारों रूपी शत्रुओं पर हमें जीत प्राप्त करनी है, विजयी बनना है। और दूसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व, बाह्य प्रकृति भी हम देख रहे हैं अपना तमोगुण रूप दिखा रही है, कहीं एकदम अति ठंडी है, कहीं एकदम अभी भी एक भारत के अंदर ही कहीं बिल्कुल अत्यधिक गर्मी है, कहीं बाढ़ आती है, बरसातें पड़ रही हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भूकंप है, कहीं आग लगी है, ज्वालामुखी फटा है, तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं। और परिवर्तन के लिए बाबा के सबसे बड़े साथी जो हैं वो प्रकृति के तत्व ही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जिसको कहते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश में बहुत सहायक हैं, मदद करती हैं। लेकिन बाबा के बच्चे उस प्रकृति के वार से कभी हार न खा लें, प्रकृति उन्हें समय पर साथ दे, धोखा न दे। क्या आप सभी एक संकल्प ले सकते हैं कि इस नए वर्ष में हम प्रकृति को कुछ समय योग का दान जरूर देंगे? बहुत अच्छी एकाग्रता के आधार से अपने पवित्र प्रकंपन, पवित्र शुद्ध विचारों की शक्ति, शांति के प्रकंपन, शक्ति के प्रकंपन, जिनसे प्रकृति के तत्वों की सेवा हो, उन्हें भी लगे कोई हमारे साथी हैं, हमें मदद कर रहे हैं, हमें सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रहे हैं। हम सब अगर हो सके सभी समय निकालना प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करने का, सबसे अच्छा समय है शाम को 7 से 7:30 बजे तक का नुमाज शाम का समय। और मैंने देखा अपनी सभी दादियों को, कोई भी सेवाएं हों, कितनी भी सेवाएं हों, कितने भी कार्य हों, उन्होंने इस शाम के 7 से 7:30 के नुमाज शाम के समय कोई सेवा दूसरी नहीं की, केवल प्रकृति के तत्वों के लिए योग किया। हर स्थान पर भट्टी योग चला, तपस्या चले, और इस कारण से वो प्रकृति जीत बनी। प्रकृति के तत्वों से भी नुकसान नहीं हुआ और इन प्रकृति के शरीर के प्रकृति के भी किसी तत्व ने उन्हें दुख नहीं पहुंचाया। भले पेपर आया प्रकृति के, लेकिन उस पर जीत प्राप्त कर ली, विजयी बन करके रही, हाय हाय नहीं किया। इसलिए हम सब ध्यान दें, 3 प्रकार की प्रकृति है। एक है जो हमारी नेचर बन गई, संस्कार जिसको हम कहें, स्वभाव कहें, जो कर्म किए, जो आदतें बनी, वो एक नेचर बन गई, वो भी प्रकृति ही है। दूसरी है कर्मेंद्रियां, हमारी प्रकृति है। प्रकृति के पांचों तत्वों का अगर इसके अंदर बैलेंस है तो शरीर ठीक है, और एक बैलेंस भी अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाए, ऑक्सीजन ठीक न जाए, जठाग्नि खराब हो जाए, खुली हवा न मिले, आकाश का वायुमंडल न मिले, तो जीवन चल सकता है क्या? पांचों तत्व चाहिए शरीर को भी। तो आत्मा जब अपनी नेचर को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध बनाती है तो ये नेचर उसको साथ देती है, शरीर रूपी नेचर उसको साथ देती है, और बाहर की नेचर को जब वो अपने योग की किरणें देता है तो ये योग की किरणें उससे वो सत्व प्रधान बनती है, सुखी बनती है, और वो हमें सहायता देती है। तो क्या हम सभी नए वर्ष में आधा घंटे प्रकृति की सेवा कर सकते हैं? अपनी सेवा तो करते हैं हम सभी, अपने लिए योग करते हैं, अमृत वेले वरदान लेते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नमाज शाम के समय ऐसे बैठ करके बस बाबा प्रकृति पति मालिक है, वो मुझे आत्मा को बिल्कुल पावन बना करके इन प्रकृति के तत्वों को सकाश दे रहा है, चारों तरफ वो सकाश फैल रही है। ये नए वर्ष की प्लानिंग की जाए मेरे विचार से, और सभी को कुछ समय इस प्रकृति के पांचों तत्वों को योगदान जरूर देना चाहिए, जिससे ये प्रकृति हमें समय पर नुकसान न पहुंचाए, और साथ साथ कोई भी ऐसा कार्य आए तो उसमें हमें सहयोगी बने, मदद करे। तो स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति बने, महान स्थिति बने, उसके लिए हम सब को बहुत अच्छी अपनी आप ही प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर प्रकार की परिस्थिति को पार करने का साधन केवल स्वस्थिति है, और स्वस्थिति ही हर पेपर में अंतिम समय में हमारी आंतरिक प्रॉपर्टी है, धन काम नहीं आया, साधन काम नहीं आते, संबंधी काम नहीं आते। जब स्थिति अच्छी होती है तो नथिंग न्यू, बहुत सहज उस पेपर को हम पार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति बनाने के लिए मैं आपको और दो बातें सुनाता हूं। एक है हर दृश्य को देखते हुए साक्षी दृष्टा रहने का अच्छा अभ्यास। क्यों, क्या में जाने की जरूरत नहीं है, इसके सामने ऐसा क्यों हुआ, इसके सामने ऐसा क्यों हुआ। बहुत पेपर के प्रश्न आते हैं, उलझ जाता है कई, कोई कोई उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसने क्या ऐसा किया। अपने भी पार्ट में चलते हुए संकल्पों में, शरीर के हिसाब किताब में, अपने संस्कारों में कुछ समय के लिए साक्षी हो जाओ। साक्षी माना अलग से देखने का अभ्यास, उसके बीच में उस पार्ट में मिक्स नहीं होना। देखो, हर्षित रहो और उसको जो मदद कर सकते हो दूर से करो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को मदद करता है, दवाई भी देगा, इंजेक्शन भी देगा, लेकिन वो अगर दर्दी बीमार कोई हाय हाय कर रहा तो डॉक्टर हाय हाय नहीं करने लगेगा, उसका इलाज सोचेगा, उसकी दवाई सोचेगा। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो चारों तरफ हाय हाय का दृश्य है और हर एक आत्मा के अपने अपने कर्म हैं, हिसाब किताब हैं, वो सब के सामने आने वाले हैं। क्या आप सभी शुभ भावना शुभ कामना के संकल्पों से संपन्न बहुत रहम दिल बन करके उनको सकास दे सकते हो, मदद कर सकते हो कि सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा भी मदद नहीं करता है, परिवार भी मदद नहीं करता, ये तो इतना सहयोगी था, इतना सेवाधारी था, बस कईयों की बुद्धि उसी में ही चली जाती है। बाबा कहता नहीं बच्चे, एक साक्षी दृष्टा में स्थित रहने का अभ्यास करो, देखो साक्षी होकर। और दूसरा है कि कोई भी प्रश्न न उठाते हुए हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है, कल्याण समाया हुआ है, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लग जाए, संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाए। संकल्पों पर इतना हमारा नियंत्रण हो, इतना अच्छा कंट्रोल हो, जो जब चाहे इनको हम ब्रेक दे सकें, जहां चाहे वहां हम रोक सकें, नहीं सोचना है मुझे, स्टॉप कर ले, मेरा कोई इनसे कनेक्शन नहीं है, क्या करना मुझे, बाबा बैठा है, बड़े बैठे हैं, मैं अपनी बुद्धि को क्यों चला रहा हूं। अगर हमारी फुल स्टॉप लगाने की कंट्रोलिंग पावर आ गई, संकल्पों पर कंट्रोल, तो बहुत सारी बातों को हम सहज क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो कई प्रकार की परिस्थितियां आत्मा को एक सेकंड में मुझा देंगी, हलचल में ले आएंगी, डगमग कर देंगी। कई लोगों को न बाबा अच्छा लगेगा, न परिवार अच्छा लगेगा, न ब्रह्मा भोजन अच्छा लगेगा, न मुरली अच्छी लगेगी, न क्लास में आना अच्छा लगेगा। माया ने इस कोविड में ये पेपर लिया है, आज तक भी कई हैं जो ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, क्लास में नहीं आते, वार किया है माया ने। हम तो सुनते हैं ना, मधुबन की मुरली सुनते हैं, वारसी की मुरली सुनते हैं, यहाँ की मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते हैं या मुरला सुनते हैं, कहाँ बुद्धि होती है मुरली के समय। बाबा के घर का वाइब्रेशन नहीं मिलता, पवित्र बहनों की दृष्टि नहीं मिलती, उनके हाथ की टोली नहीं मिलती, उस योग के, उस प्रकंपन के, उस स्थान के वायुमंडल का लाभ नहीं मिलता। कितनी चीजों से वंचित होकर के घर में मुरली सुन करके क्लास कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा सभी अंडरलाइन करना यहां से जाने के बाद, अगर चांस मिला है, हो सकता है फिर बाबा कहे बच्चे बैठो घर में सुनो, और घर में भी सुनने के साधन अगर बंद हो जाए तो क्या करेंगे, ये भी समय आएगा। लेकिन जब तक चांस है तब तक तो अलबेले नहीं बनो। जो चांस है एक दिन भी अब्सेंट न लगे, एक बार तो बाबा के घर में जाना ही है, वहां की शक्तियां लेनी ही हैं। तो नए वर्ष में कुछ नवीनता सबके अंदर आनी चाहिए, वही अलबेला नहीं चलना चाहिए। अगर श्रेष्ठ स्थिति बन गई, हम सब ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर ध्यान दिया तो दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ, बहुत सेवाएं हुई हैं, खूब सम्मेलन कर लिए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, अभियान निकले हैं, यात्राएं हुई हैं, बहुत सारे सेवा के बाबा ने साधन दिए हैं, विंग्स बन गई और उस विंग्स ने अनेक कार्यक्रम कर लिए, संदेश देने का कार्य बहुत फास्ट हुआ है। लेकिन अभी तक बाबा एक क्वेश्चन लगा रहा है, बाबा को कब प्रत्यक्ष करोगे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो कई स्थानों पर प्रत्यक्ष हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। अभी इस वर्ष हम सब एक संकल्प करें, किस विधि से हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं नहीं, कई लोग तो इसलिए सेवा कर रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरे विंग का नाम हो जाए, कोई अच्छे अच्छे सोविनियर छप जाए, कोई एक गोल्ड मेडल मिल जाए, गिन्नीज बुक में नाम आ जाए, निम्का बुक में ही नाम आ जाए, नाम के पीछे सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन बाबा का नाम कब भला होगा? हम सब के अंदर एक धुन लग जानी चाहिए कि इस वर्ष 2025 में हम सबको अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहारिक जीवन से, अपनी ऊंची धारणाओं से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से बाबा का नाम रोशन करना है। बस बाबा ही दिखाई दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई पहचाने या न पहचाने। लेकिन ऐसी अंदर की स्थिति एक रस अचल अडोल बन जाए, जो उसके आधार से सबको पता चले इनको मिला कौन है, इनको पढ़ाता कौन है, इनके साथ कौन है, उसके लिए मैं 5-6 बातें आपके सामने रखता हूं। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है साक्षात्कार, आदि सो अंत। बाबा का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त हम ही हैं। एक दिन की मैं बात सुनाता हूं, मैं अपनी गुलजार दादी के सामने बैठा था और थोड़ी थोड़ी कभी कभी चिटचैट करने के लिए प्रश्न पूछता था। तो दादी को एक दिन मैंने ऐसे अचानक पूछ दिया, योग के बाद शाम को 7:30 बजे योग पूरा हुआ तो दादी के सामने हम बैठ जाते थे, दृष्टि लेते थे यहीं पर शक्ति भवन में। तो दादी को मैंने कहा, दादी एक प्रश्न उठता है। कहती, क्या है दादी? सब दादियां तो अव्यक्त होती जा रही हैं, बड़ी दादी प्रकाशमयी दादी जो कहती थी मैं अंत तक रहूंगी, दादी अव्यक्त हो गई 2007 में। जानकी दादी की उम्र उस समय 101 साल के लगभग थी, मैं दादी कितने दिन हमारे साथ रहेंगे वो भी पता नहीं। हमारी सब दादियां जिनके द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना चाहिए वो तो सब अव्यक्त होती जा रही हैं, आखिर साक्षात्कार किसका होगा, किसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा? तो दादी का उत्तर तो बड़ा रमणीक होता था, कहती, तेरों को क्या चिंता लगी है? मेरे को चुप कराने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा, दादी चिंता मेरे कोई नहीं है, लेकिन संकल्प चलता है कि आप दादियों ने इतनी तपस्या की, इतनी पवित्रता की स्टेज बनाई, इतनी अच्छी स्थिति जो आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे, हम लोग अभी कहाँ हैं? कहती है, तो बाबा का काम है और बाबा जिससे भी अंत में कराना चाहेगा करा लेगा, बाबा अव्यक्त वतन से भी बहुत कुछ कराएगा, अब वो समय आ गया है। हम सब देख रहे हैं कि अव्यक्त वतन से बाबा अपनी इन्हीं संपूर्ण आत्माओं को इमर्ज करके और इन्हीं द्वारा भी इतना सेवाओं का विस्तार करा रहा है, खुद भी अव्यक्त में नहीं आ रहा है साकार में, लेकिन जो दादियां अव्यक्त हुई हैं उनकी संपूर्ण स्टेज, नया जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में चिंता करने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन वो जो आत्माओं की संपूर्ण स्टेज है, जहाँ पर वो संपूर्णता के आधार से बाबा के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा बाबा की स्थापना का कार्य चल रहा है, फास्ट चल रहा है। और कोविड के बाद तो 2007 के बाद तो कितने नए नए ब्राह्मणों का जन्म हो गया, हजारों बाबा के बच्चे बन गए। लेकिन बच्चों को क्या करना है, उसके लिए मैं 5-6 बातें बताता हूं जो साकार में है। अव्यक्त रूप तो अव्यक्त वतन से करेगा। हम सभी बाबा के बच्चों को वर्तमान समय एक एक को एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। अगर हमारा ब्राह्मण संगठन एक हो जाए, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरी एरिया तेरी एरिया, जो हमारे मतभेद के बॉर्डर बने हुए, अगर ये खत्म हो जाएं, बाबा आज प्रत्यक्ष हो जाए। किस लिए? चलो ठीक है, कंट्रोल के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए सब बनाया गया था, लेकिन जहां सेवाएं रही हुई हैं, कर नहीं सकते हैं, करने भी नहीं देते हैं। क्या बेहद की दिल से, बेहद की बड़ी भावना से कम एक बार तो बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंच जाए, तूने दिया या मैंने दिया, इसने किया या उसने किया। जब हम सब इस सूत्र में, बेहद में आकर के, बेहद की वृत्ति से, एकता के आधार से बाबा की सेवा करेंगे, तो बाबा का नाम रोशन हो जाएगा। और दूसरा है एक रस स्थिति संगठन में। अभी हमारे इतने संगठन में हम योग कराने बैठे, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कोई संकल्प रच रहा होगा, एक रस नहीं बनता। आप एक ट्रायल करना, और जो हमारे सेंटर्स की बहनें हैं, निमित्त कुछ बैठी हैं भी बहनें हमारे सामने, 50 का ग्रुप, 60 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 15 मिनट के लिए एक ही ड्रिल करो, एक ही संकल्प दो दो, और उसी संकल्प में बैठ जाओ। कमेंट्री की, गीत की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा अभ्यास करता हूं, शांतिवन में कराता भी हूं। 15 मिनट निराकार स्थिति में बैठेंगे, 15 मिनट फरिश्ता स्थिति में बैठ करके अव्यक्त वतन का अनुभव करेंगे, 15 मिनट हम साकारी स्टेज में अपने ऊंचे सोमान में बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठेंगे। अगर योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं ऐसी सुंदर एक रस एकाग्रता का अभ्यास करें, तो पूरे वायुमंडल में साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। ताली नहीं बजाओ, करके दिखाना। पॉजिटिव ग्रुप, नेगेटिव चिंतन वाला ग्रुप नहीं चाहिए। बहुत अच्छे विचार, सब प्रश्नों से पार, बैठ जाओ ऐसे 10 मिनट 15 मिनट, चलो आज हम 1 घंटा तपस्या करते हैं। और ऐसी तपस्या अगर ब्राह्मण एक मत एक रस स्थिति एकाग्रता के आधार से करेंगे, तो उसके जो वाइब्रेशंस है, प्रकंपन जिसको हम कहते हैं, वो दूर दूर की अशांत आत्माओं को शांति देंगे, भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति देंगे, परेशान आत्माओं को शांति का अनुभव कराएंगे। बाबा कहाँ है उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे वो। अभी इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, इसलिए एक और बात आती है ध्यान पर। क्या हम सभी एक संकल्प कर सकते हैं नए वर्ष में? केवल हम अपने मुख से मधुर बोल ही बोलेंगे, कोई भी एक बोल भी कटाक्ष वाला कटु वचन मैं अपने मुख से नहीं निकालूंगा, कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो। इसमें जो हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाओ, संकल्प करना नए साल के लिए। मधुरता संपन्न, मधुर वाणी और व्यवहार लोगों पर बहुत गहरी छाप डालता है। अपने आप लोग समीप आएंगे कि इतनी नेगेटिव वातावरण में इतनी इनकी अपमानजनक बातें इनके बीच में हो रही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी वाणी को बहुत संयम में रखा है। कोई एक बोल भी इनके मुख से अपशब्द हमने नहीं सुने। कौन सी शक्ति है जो इनको इतना बल दे रही है, जो हर बात को सहन करते हैं, सामना करते हैं, समा लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो शक्ति बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। आप सभी इस बात को इस साल के लिए वाचा सेवा की साथ साथ, बाबा कहते हैं मिली जुली सेवा हो, मनसा बहुत बहुत शुद्ध और पवित्र विचारों वाली, मनसा शक्तिशाली, मनसा एकाग्र, और वो शुद्ध श्रेष्ठ शुभ भावना संपन्न मनसा के बाद जो बोल निकले वो बहुत सरल और मधुर बोल हों। तो मधुरता वाणी और मनसा कई आत्माओं को बाबा के समीप लाएगी और बाबा के वारिस बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने अंतिम समय की स्टेज बताई हुई है। आप बच्चों को बाबा का संदेश देने की जरूरत नहीं है, आप माइट बनो और माइक दूसरे बनेंगे। वो आपका बात कहेंगे, वो कहेंगे बाबा इनको पढ़ा रहा, भगवान मिला है। आप कहोगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए हम इतनी ऊंची माइट स्वरूप स्थिति बना लें जो माइक तैयार हो और माइक अपना कार्य अपने आप करें। बाबा कई बार कहते हैं ऐसा समय आएगा जो आप बच्चों को बनी बनाई स्टेज मिलेगी, आपको ही लोग वीआईपी समझेंगे, आपका ही आदर होगा, आपको ही लोग सम्मान करके आगे बुलाएंगे। लेकिन आप ऐसी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो बस। तो जब एक एक बाबा का बच्चा दर्शनीय मूरत बनेगा, दिव्य दर्शनीय मूरत, ये दर्शन तो हम करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर दिव्यता है, अलौकिकता है, रूहानियत है, मधुरता है, ये जो दिव्य गुण हैं, जब हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे पवित्र वाइब्रेशन से, हमारे हर कर्म से लोगों को अनुभव होंगे, तब हम दर्शनीय मूरत बन करके अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखा सकेंगे। अभी समय है सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करने का, सीरत दिखाने का। अब इसके लिए बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, फुल अटेंशन अपने संकल्पों पर, अपनी वाणी पर, अपने चिंतन पर। मुझे क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, नहीं तो स्टॉप कर देना है। सवेरे से रात तक हम सब एक ही लक्ष्य रखें कि कभी भी सत्यता में हमारी सभ्यता खत्म न हो जाए। अगर हम सब बाबा के बच्चे सोचते हैं, समझते हैं कि हम सत्यता की अथॉरिटी हैं, हम सच्चे हैं, हमारा ज्ञान सत्य है, हमारी धारणाएं सत्य हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है बाबा को प्रत्यक्ष करने का। इस बात को अंडरलाइन करना, हमारी प्रत्यक्ष जीवन ही लोगों के लिए प्रमाण है ये सत्य कह रहे हैं, इनका ज्ञान सत्य है। कई लोग विरोध करते हैं सनातन धर्म का ही ज्ञान नहीं है, लेकिन उस सत्य ज्ञान को, जो सनातन धर्म की मूल धारणाएं हैं, अगर वो किसी के जीवन में नहीं आई हैं तो सत्यता उस ज्ञान में है कहां। हम सब बाबा के बच्चे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, ज्ञान नया है और भगवान ने नए ज्ञान दे करके हमारी नई जीवन बनाई है, और नई जीवन में अगर हमारी वो ऊंची धारणाएं हैं, हमारी संपूर्ण मन वचन कर्म की पवित्रता है, हमारे व्यवहार की शुद्धता है, निर्मलता है, तो एक न एक दिन सब मानेंगे कि सच्चे सनातनी तो आप ही हो। और इस बात को अभी प्रत्यक्ष करने का समय है। जो मूल धारणाएं हैं, सात्विक शुद्ध आहार है हमारा, पवित्र योगी जीवन है हमारी, इतना सरल मधुर व्यवहार है, इतना श्रेष्ठ कर्म है, कोई छल, कोई कपट, कोई भ्रष्टाचार, कोई चोरी, कोई छिपाना, किसी भी प्रकार का दुनिया वाला कार्य बाबा के बच्चे नहीं कर सकते। अगर हम सब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएं, जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। कल मुरली सुनाते, परसों में मुरली सुना रहा था किसी स्थान पर, बाबा ने बड़ी रमणीकता से एक बात कही, बच्चे दुनिया के अंदर लोभ के कारण कुछ न कुछ लेना पड़ता है, बाबा मना नहीं करता बच्चों को, लेकिन ध्यान देना ऐसा न हो पुलिस ले जाए जेल में, बाबा जवाबदार नहीं है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, बच्चे क्यों ऐसे कर्म करो जो बाबा का भी, ब्रह्मा कुमार का, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी बदनाम हो, ये भी ऐसे करते हैं। हम अपनी सत्यता पर अडिग रहें, हम अपनी धारणाओं पर अडिग रहें, बाबा दो रोटी खिलाएगा, क्यों हम भ्रष्टाचार की कमाई करें, क्यों हम झूठ कपट करके ले पैसा इकट्ठा करें, किसके लिए चाहिए हमको। अगर सब इस बात को अपने जीवन में उतार लें कि कुछ भी हो जाए हम अपने मार्ग से हटेंगे नहीं, हम अपनी धारणाओं में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए भूखे रहेंगे लेकिन हम चोरी का, छिपा हुआ घूसखोरी का पैसा नहीं घर में आने देंगे, मैं कहता हूं आज बाबा आपके जीवन से दिखाई देने लगेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को इस समय अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने की आवश्यकता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। संगठन की एकता से, हम सब की एकाग्रता से, हमारी मधुरता से, हमारे दिव्य दर्शनी मूरत से, और सत्यता में सभ्यतापूर्ण व्यवहार से। कई बार हम कहते हैं हम सच्चे हैं इसलिए हमको जो आएगा, झूठ हम सहन नहीं कर सकते, जो आएगा बोल देंगे, जो आएगा कह देंगे। बाबा कहता सत्यता को कभी सिद्ध किया ही नहीं जाता, जो सच्चे हैं वो बहुत सभ्यता से बात करते हैं, बहुत नम्रचित रहते हैं। तो ये अगर धारणाएं हमारे जीवन की होंगी, तो अभी समय ऐसा है कि हम सिर्फ भाषण ही न करते रहे, प्रोग्राम ही न करते रहें, लेकिन हमारा जो इतना बड़ा ब्राह्मण संगठन तैयार हुआ है, पूरा ही संगठन एकमत हो जाए, एक बाबा दूसरा न कोई, हम सबको मिलके एक का नाम रोशन करना है, ऐसे हम सब एक नामी का अवतार बने, इकोनॉमी करें अपने संकल्पों की, अपने समय की, अपनी संपत्ति की, तो एक नामी, इकोनॉमी, एकाग्रता, एकमत, एकता बाबा का नाम रोशन करेगी। ऐसी ही प्लानिंग करो। ये नया वर्ष विश्व परिवर्तन के एक निमित्त बने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो, बाबा का नाम रोशन हो, और इतनी दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को जल्दी से जल्दी मुक्ति धाम जाने का रास्ता मिल जाए। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट के लिए, जी थोड़ा सा, 7:30, 6:30 नहीं हुआ है, सभी अपने इस शरीर से डिटैच होकर के भ्रकुटी आसन पर बैठो, एक रस स्थिति। इतने बड़े संगठन में अगर सभी एक ही स्थिति में बैठ जाएं कि मैं एक चमकता हुआ हीरा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, और उस सर्वशक्तिवान बाबा की पवित्र किरणें, सफेद पवित्र किरणें यहाँ आ रही हैं, और वो किरणें इस हीरे से 7 किरणों को बिखेर रही हैं। शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, ज्ञान, वो सब शक्तियां वायुमंडल में फैल रही हैं। कोई भी हलचल नहीं, एक रस एकाग्र स्थिति में बैठकर बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं पर लेते हुए पूरे वायुमंडल में ये पवित्र वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। अपने चमकते हुए हीरे को देखो और उस सर्वशक्तिवान परम पवित्र परम ज्योति की किरणें स्वयं के मस्तक पर एकाग्र कर लो। शांति।